तो आज आपका सबका 16 अप्रैल 2013 के संध्या जागृति में हार्दिक स्वागत है भक्ति वेदांत अस्पताल में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग समय निकाल कर इस कथा में आए। प्रभु रामचंद्र का जन्मदिन बहुत नज़दीक आ रहा है। कितने तारीख को है? 20 तारीख को है वैष्णव कैलेंडर में। एक्चुअली इस बार 19 और 20 दोनों तारीख को रामनवमी है, क्योंकि नवमी का दिन जो है वो 19 के कुछ समय पर शुरू हो रहा है और वो 20 के कुछ समय तक चलने वाला है, इसलिए दोनों दिन इस समय रामनवमी का उत्सव है। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार हमारे मंदिर में वो 20 तारीख को मनाया जाएगा। तो प्रभु रामचंद्र का जो चरित्र है वो इतना पवित्र है कि हमारे पुराने जो हमारे लोग थे, जो हमारे पूर्वज कह सकते हैं, उनके पुरखे कह सकते हैं, है ना, हमारे दादा, उनके दादा, परदादा, एक ज़माना था कि हर रोज़ खेती का काम करके, अपना व्यवहार व्यापार करके शाम को सब लोग एकत्र होते थे और गांव में जो सबसे बड़े उम्र के बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे वो रामायण पढ़ते थे और सभी गांव की जनता राम की कथा सुनते थे हर रोज़, हफ्ते में एक बार नहीं, रामनवमी के उत्सव के समय पे नहीं, हर रोज़। इसलिए बच्चों को बचपन से ही भगवान राम के बारे में पूरी जानकारी हुआ करती थी। ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो 15 साल का हो गया लेकिन उसको राम के बारे में पता नहीं। 15 साल का बच्चा मतलब पूरी रामायण की कथा उसको बाय हार्ट, बिगिनिंग टू एंड, ऐसे होता था। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि अमेरिका के द्वारा टेलीविज़न का भेंट मिला भारत लोगों को और दुर्भाग्य हमारा वहीं से शुरू हुआ। हमको लगता है टेलीविज़न आने से बड़ी खुशी मिलती है, दुनिया भर का नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन दुनिया भर का नज़ारा क्या है, केवल नंगे औरत और नंगे औरत आदमी लोग नाचते रहते हैं, वही दुनिया का नज़ारा है और क्या है, या तो कुछ खेलते रहते हैं अपनी जेब भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और हम सब उसको देखते रहते हैं, उस पर लाभ कुछ नहीं होता है, या तो पिक्चर चल रहा है कोई, उस पर रोमांटिक स्टोरी चल रही है, हीरो हीरोइन प्रेम कर रहे हैं और विलन आके उसमें मारामारी कर रहा है, फिर डिशुम डिशुम होता है, फिर फिल्म ख़त्म हो जाती है, या तो सीरियल चलती रहती है उसमें पति पत्नी और वो उसके रिश्ते चलते रहते हैं, वही सीरियल चलते रहते हैं दिन भर, किसका किसके साथ लफड़ा है, कौन किसके साथ भाग के जा रहा है, कौन रेप कर रहा है, कौन गोली बारूद कर रहा है, हाँ कौन बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। अभी हम लोग आज सुबह जिम्नासियम में गए थे तो उधर पड़ा कि कल रात को इंडिया के 12 बजे और अमेरिका के 2:30 बजे दो बॉम्ब ब्लास्ट हो गए बॉस्टन में ही। लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं मैराथन में, होता है ना हमारे बॉम्बे में भी, वैसे वहाँ पर मैराथन भाग रहे हैं, मैराथन का एंड होते होते दो बड़े धमाके हो गए, उसमें 3 बच्चे मर गए और 140 लोग जख्मी हो गए। तो या तो हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं, या तो पति पत्नी और वो की सीरियल देखते रहते हैं, या तो लव स्टोरी का फिल्म देखते रहते हैं, या तो दुनिया भर में जो नंगा नाच चल रहा है उसके बारे में देखते रहते हैं। और जब से ये टीवी आया तब से वो रामायण का जो प्रथा थी रोज की बैठने की, वो बंद हो गई, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है रामायण छोड़कर वो टीवी देखने को बैठने लगे शाम को। बड़े लोग पूरा आप पुकारते थे, आ जाओ बैठो, तो बोले नहीं नहीं नया नया टीवी आया, सब लोग टीवी को चिपक के बैठे हुए, वे मैच चल रही है तो पूरा पैसा देके भी वहाँ पर भर के देख रहे हैं। मैच देख के किसका लाभ होता है मालूम है आपको? मैच देख के केवल जो मैच खेलते हैं और जो मैच ऑर्गेनाइज करते हैं उनका ही लाभ होता है, बाकी सबका नुकसान होता है, क्योंकि बाकी सब लोग जेब खर्च करके उनको पैसा देते हैं और वो करोड़ों में कमाते हैं, और हम लोग ऐसा इंडिया हार गई तो हार्ट अटैक आता है, इंडिया जीत गई तो दारू पी के बेहोश हो जाते हैं। हाँ मेरे दोस्त को, मेरा क्लासमेट है वो, 20 साल पहले की बात है, जब पाकिस्तान जीत गई इंडिया खिलाफ तो इसको हार्ट अटैक आ गया, एडमिट हो गया बेचारा वो। अभी इंडिया पाकिस्तान कभी हारते कभी जीतते किसको फर्क पड़ता है, 75 साल में कौन जीता था, अभी आज क्या कनेक्शन है उसका। 67 साल में उसने जितना कमाया आज भी कमा रहे हैं वो, हम लोग आज भी कंगाल होते जा रहे हैं उसको देखते देखते, समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और दिमाग को भी बढ़त करने का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो टीवी देखता है उसको दिमाग की वृद्धि नहीं होती, उसकी उसकी सोच की पावर बंद हो जाती है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि हमारा जीवन का जो बहुत ही कीमती समय है, कुत्ता बिल्ली के जीवन के समय की बात नहीं कर रहे हम, कुत्ता बिल्ली पंछी के जीवन के समय की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि वो समय में से कुछ भी निकलता नहीं है। क्या निकलता है? केवल आहार, निद्रा, सेक्स करना और खुद की सुरक्षा करना, इतना ही निकलता है जानवरों के जीवन से। लेकिन मनुष्य के जीवन में से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इतनी बड़ी प्राप्ति हो सकती है। वो कीमती समय है जो अपना पेट के लिए 8 घंटा काम करने के बाद शाम के समय में सब लोग इकट्ठा होकर एकाग्र होकर भगवान की कथा सुनते थे, अपने भाग्य का उदय किया करते थे, भगवान की कथा में लीन होकर अपने आत्मा की शुद्धि किया करते थे और जीवन दिन भर का जो कष्ट, पीड़ा, परेशानी होती थी वो सब भूलकर प्रभु के गुणगान में अपने समय को बिताकर, मन को शांत करके, प्रभु की आरती करके, प्रसाद पाकर सब लोग आराम करते थे। बहुत गहरी नींद सोकर सुबह जल्दी 4 बजे उठते थे और फिर प्रभु का नाम गुणगान करते थे, जप किया करते थे। इतना सुंदर संस्कृति था। हमारे संचालक डॉक्टर संखे भी कहते थे कि उनके बचपन में भी उनके घर में ऐसा होता था। हमारे सर्जन जो डॉक्टर संजय परब है, उनके गांव में आज भी ये चल रहा है, कुणकेरी में सावंतवाड़ी के पास। उनके घर में जो मंदिर है वो परिवार के सब लोग आज भी शाम को एकत्र होते हैं और 1 घंटा प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं, फिर आरती करते हैं, प्रसाद पाते हैं, सो जाते हैं। इतना मन शांत होता है उसके अंदर, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, दिन भर का कोई पीड़ा रात को कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है वो, हाँ सुबह तक शांत मन में सब, फिर सुबह अपना काम करना है वह प्रभु का नाम लेके। तो ऐसी ये रामायण की शक्ति है कि सब लोगों को कृष्ण भगवान के बारे में सब कुछ समझ में आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो क्या क्या लीला करते हैं वो सबके समझ में नहीं आता है और कन्फ्यूजन कभी कभी पैदा होता है, उसके समझाने के लिए कोई चाहिए। लेकिन प्रभु रामचंद्र का लीला जो है ना, वो बच्चा भी पढ़ेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं उसके अंदर, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं आता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। और प्रभु रामचंद्र की स्टोरी जो है वो कोई आनंद की लीला नहीं है, वो हमारे लिए किए हुए त्याग की लीला है। प्रभु रामचंद्र का जो राम रामायण हम पढ़ते हैं उसमें अधिकतर लीला क्या होती है, वो जंगल में थे बेचारे, वनवास में थे, नंगे पैर थे, पेड़ की खाल पहनते थे, जटाधारी थे, कंदमूल खाते थे, पर्णकुटी में रहते थे। हाँ, रोटी कपड़ा मकान कैसे हो गया? रोटी मतलब कंदमूल, कपड़ा मतलब पेड़ की खाल, और मकान मतलब पेड़ के पत्तों से बना हुआ झोपड़ी। पैर में जूता नहीं, अंग में राजवस्त्र नहीं, और दिन रात राक्षसों का भय, लड़ना, मारा मारी करना, संकट से रक्षा करना, फिर पत्नी का हरण, फिर समुद्र लांघना, फिर क्या क्या कष्ट की ही पूरी लीला है। हमारे आनंद के लिए है, क्योंकि वो जो कथा सुनता है उससे सुनने वाले का हृदय शुद्ध हो जाता है और उसके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसी राम की लीला का महात्म्य है। तो ये लीला भगवान, क्या जरूरत है भगवान को? तो अपने धाम में रह रहे हैं फर्स्ट क्लास एकदम, लक्ष्मियों के साथ में आनंद ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उनको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। वो भी ऐसे लोगों के बीच में जो उनको चाहते नहीं हैं, जो उनका विद्रोह करते हैं, जो उनके खिलाफ युद्ध करते हैं, उनकी पत्नी को भगा के लेके जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आके उनको क्या करना है इधर, लेकिन फिर भी आते हैं। क्या कहानी उसकी? अरे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीन का जन्म हुआ। तो रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ तो उसके पिताजी ने कहा था कि ये दोनों तुम्हारे कुल का नाश करने वाले होंगे और जो बचा कुचा कुल रहेगा ना वो विभीषण बचाएगा। फिर इन्होंने तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि ब्रह्मा जी को मजबूर होकर आना पड़ा। अरे भाई और तपस्या करेंगे ना तो सारे दुनिया को ही खा लेंगे ये लोग, इतना वरदान मांगेंगे योग्य बन जाएंगे उसके। तो उनकी तपस्या आगे बढ़नी नहीं चाहिए इसलिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा। बोले क्या चाहिए तुमको, उन्होंने ढेर सारा वरदान मांग लिया दोनों ने। और रावण ने ऐसा वरदान मांगा कि किसी से भी उसका वध नहीं होना चाहिए, ना देवता से, ना किसी किन्नर से, यक्ष से, किससे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको अपने बल पर इतना गर्व था कि उन्होंने जानवर और मनुष्य इनको कोई कीमतवान समझा ही नहीं, बोले इनको क्या वरदान मांगना है कि इनसे भी मुझे मृत्यु का अभय वरदान दे दो, वो तो हम नाश्ते में खाते हैं उनको, मनुष्य को और जानवरों को, उनसे क्या वरदान मांगना है कि भाई इनसे भी बचाओ, देवताओं से मांगा ठीक है। तो तथास्तु बोल दिया, इतना शक्ति अस्त्र शस्त्र मांग लिया, इतना सिद्धि मांग लिया, इतना जादू टोना मायावी शक्ति जो मांग लिया कि इन्होंने तो हाहाकार मचा दिया पूरा। और कुंभकर्ण ने भी ऐसा सोचा कि इंद्र का पद चाहिए, इंद्रासन चाहिए, तो उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती को उसकी जिह्वा पर बिठाया गया, समझ में आया आपको, देवी सरस्वती जो है उसको कहा गया कि जाओ उसकी जिभ पे बैठ जाओ और जो उसको बोलना है उसके उल्टे बोलो। तो उसको कहना था इंद्रासन चाहिए, मतलब इंद्र का आसन, मतलब इंद्र का पद चाहिए, तो मुख से क्या निकला, निद्रासन चाहिए। तो सब तुरंत बोला तथास्तु, तुरंत ऐसा बोला कुछ गलत बोल रहा है ऐसा, तुरंत बोला तथास्तु। तब उसको समझ में आ रही मैं क्या बोला, बोला कम से कम एक दिन तो जगा रहने दो मुझे, बोले कोई बात नहीं एक साल के बाद एक दिन तू जग जाने का और जो खाना है वो खा जाने का बस, फिर सो जाने का बस। मतलब इतने पापी थे ये लोग कि अगर साल भर ये जीवित रहेगा, जगा रहेगा, तो दुनिया भर में कितना तकलीफ करेगा, कितना कष्ट करेगा। तो इस तरह से दोनों ने वरदान मांग के वो कुंभकर्ण सो गया और रावण ने ऐसा हाकर मचाया, जगह जगह जाकर जितनी जितनी सुंदर स्त्रियां थी सबका भोग किया उसने, रेप किया उसके ऊपर, सबके ऊपर, देवताओं की स्त्रियों पर, ऋषियों की स्त्रियों पर, और जो जो अच्छा लगा उसको वो अपना लिया, उसने छीन लिया। अपना सौतेला भाई कुबेर जो था उसके पास पुष्पक विमान था, पता है पुष्पक विमान क्या होता है, वो पेट्रोल पे चलने वाला 300 सीट वाला बोइंग 747 ऐसा नहीं होता है, वो जो पायलट चाहिए ट्रेनिंग लिया हुआ, एयर होस्टेस चाहिए उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं, वो भी कॉम्पैक्ट चैम्बर रहता है उसके अंदर, बाहर का तापमान -47 अंदर का 23, ऐसा अरेंजमेंट नहीं है वो ऐसा जितना लोग चढ़ेंगे ना उतना बढ़ेगा वो अपने आप साइज में, 300 लोग बढ़ेंगे तो 300 लोगों का एरिया जगह पैदा हो जाएगा, अरे करोड़ों लोग उस पर चढ़ सकते हैं। उस पुष्पक विमान पे रामचंद्र भगवान ने 140 करोड़ लोगों को लेके गए वो लंका से अयोध्या तक, और जब 70 करोड़ चढ़े तो 70 करोड़ बोले कि हमारी पत्नियों को भी आना है, तो उतना बढ़ गया वो, तो हर एक की एक पत्नी ऐसे बढ़ गए चढ़ गए उसके अंदर, 70 करोड़ एक्स्ट्रा हो गए, 140 करोड़ लोगों को लेके लंका से उड़े वो और अयोध्या में पहुंचे। उसके अंदर ना पेट्रोल है, ना कुछ -47 का परिणाम है, ना कोई पायलट है, मन में खाली सोचना है कि अयोध्या जाना है, तो पहुंच गया अयोध्या। ऐसा पुष्प विमान था वो, दिव्य विमान, वो उसके भाई के पास था, उसकी माँ की जो बहन थी उसका लड़का था कुबेर, देवताओं का वो ट्रेजरर कोषाध्यक्ष था, उससे युद्ध किया उसने, वो छीन लिया उससे पुष्पक विमान, वो छीन के लेके आ रहा था तो रंभा के ऊपर बलात्कार किया, तो वहां पर रंभा के बलात्कार किया तो रंभा का पति ने भयभीत होकर शाप दिया, क्योंकि तो रंभा का जो पति था वो कुबेर का पुत्र था नल कुबेर, वो डर के आ रहे मेरे पिता को हरा के आ रहा है, मैं क्या उस पर युद्ध करूंगा, मैं शाप ही दूंगा, केवल बस शाप दिया कि इसके आगे तुम किसी स्त्री को बल से हाथ लगाओगे तो मर जाओगी। फिर कुंभक पुष्पक विमान लेके निकला तो सीता का हरण किया, देखा और लंका गया, फिर उसी पुष्पक विमान को लेके आया और सीता को उड़ा के लेके गया। उसके पहले वेदवती, मतलब कि सीता जो पूर्व जन्म में वेदवती थी उस पर भी बलात्कार करना चाहा उसने, लेकिन वेदवती ने उसका हाथ लगाने के पहले ही मंत्र बोलकर अपने आप को जला दिया, भस्म कर दिया अपने आप को, तो एकदम आश्चर्य हो गया उसके, अरे ऐसी भी शक्ति होती है किसके पास। तो उसने कहा कि मैं अगला जन्म लूंगी और तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी, तो वो सीता बनकर आई। हाँ जनक महाराज के घर पे। तो इसका आतंक था, उसने सभी देवताओं को अपने राज्य से भगा दिया था, पदच्युत करके वो गुफाओं में छुपे थे सब देवता लोग, इंद्र आदि सब लोग। और फिर दशरथ राजा जो थे वो आए, उनका अयोध्या में राज्य हुआ, उन्होंने कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा से विवाह किया, और भी उनको 350 पत्नियां थी लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं थी। तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ किया, मतलब वशिष्ठ मुनि के नेतृत्व में, हजारों ऋषि मुनियों के नेतृत्व में, हजारों यज्ञ कुंडों में उन्होंने बहुत दिव्य यज्ञ किया और प्रार्थना कर रहे थे। तो उस यज्ञ में ये सारे देवता लोग अपना अपना आहुति अर्पण जो किया था उनको वो स्वीकार करने के लिए आए। हमने कभी देखा नहीं है हमारे यज्ञ में कोई आते नहीं ऐसे, हम लोग उनका आह्वान करते हैं लेकिन वो दृश्य रूप में नहीं आते हैं, वो अदृश्य रूप में आते हैं। लेकिन पहले युगों में वो स्वयं आते थे, सब लोग देखते थे, अरे इंद्र आ रहे हैं, सब लोग देखते थे वायु आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, अग्नि आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, सब देखते थे, दर्शन करते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनकी स्तुति गाते थे और वो अपना अपना जो भाग हिस्सा है वो स्वीकार करके चले जाते थे। तो ये दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सारे देवता लोग आए जो भयभीत होकर छुप गए थे, इनके यज्ञ में आहुति स्वीकार करने के लिए आए। और देख रहे हैं कि दशरथ राजा इतना श्रेष्ठ ऋषि जैसा राजा है और पुत्र के लिए विष्णु से प्रार्थना कर रहा है। तो देवताओं ने वहीं खड़े रहकर विष्णु को आह्वान किया, क्योंकि वो भी त्रस्त थे बेचारे, ये भी पुत्र की मांग कर रहे हैं। तो विष्णु को पुकारा उन्होंने वहां पर खड़े होकर, तो विष्णु आकाश में प्रकट हो गए, दशरथ को दिखाई नहीं पड़े, केवल देवताओं को दिखाई पड़े। तो देवताओं ने सब मिलकर उन्होंने भगवान विष्णु को बड़ी प्रार्थना की, भगवान अभी आप आ जाओ, ये हमसे ये रावण का आतंक नहीं सहा जा रहा है, ये रावण ने तो पूरा पृथ्वी पर क्या पूरे 14 लोकों पर भयंकर अत्याचार मचा दिया है, सबका नहीं हमारा ही नहीं सबका जीवन हराम कर दिया है, अभी आप आ जाओ, ये भी पुत्र की इच्छा कर रहे हैं, इनके पुत्र के रूप में आप आ जाओ। ऐसे देवता लोग उनसे बहुत गिड़गिड़ा कर रोड़ों को प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विष्णु, देखो सीन कैसा है, यज्ञ चल रहा है नीचे और आकाश में विष्णु प्रकट हो गए हैं और वो देवताओं से बात कर रहे हैं और विष्णु को देवताओं को बता रहे हैं कि हम जरूर आएंगे, आप सब लोग भय से मुक्त हो जाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आएंगे और रावण को समूल नष्ट कर देंगे। और रावण ने मूर्खता की वजह से मनुष्य और जानवरों के प्रति अभय वरदान नहीं मांगा, तो हम लोग मनुष्य के ही गर्भ में आएंगे, दशरथ तो मनुष्य है तो हम उनके गर्भ में मनुष्य बनकर आएंगे, मैं अकेला नहीं आऊँगा, हम चार आएंगे, मैं और मेरे शस्त्र जो हैं, मेरे जो विस्तार हैं वो भी अवतार लेंगे, और आप लोग सब वानरों के कुल में जन्म लेना और भयंकर सूर्य के समान शक्तिशाली और तेजस्वी वानरों का स्वरूप से आप जन्म लेना, और मैं आप जानता हूँ आपके पास शक्ति है कि आप अपने लोक में रहकर भी अपने विस्तार को नीचे भेज सकते हो, मतलब आप अपने लोक में भी रहेंगे और आपका अंश जो है वो नीचे भी अवतार ले सकता है, तो ऐसे ही करो। तो ये जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो देवता लोग बड़े खुश होकर उन्होंने पुष्प बरसाए दशरथ के यज्ञ कुंड के स्थली पर। हाँ, देवताओं के पास ना ऐसे पुष्प होते हैं जो खबल खिलते हैं लेकिन मुरझाते नहीं कभी, अपने कैसे फूल होते हैं, सुबह लिया तो सुबह फुला रहता है, दोपहर तक मुरझा जाता है, गर्मी के समय पे तो 11 बजे ही ख़त्म। देवताओं के लोक में केवल फूल खिलते हैं, मुरझाते नहीं हैं, इसलिए बहुत स्टॉक रहता है, कभी फूलों की कमी नहीं रहती है, तो जब कोई अच्छा घटना हो गया तो वो फूल बरसाते हैं। हाँ, चलो कृष्ण भगवान ने धनुकासुर को बलराम जी ने मार दिया, अरे कर दिया पुष्प वृष्टि। हाँ, अरे रुक्मिणी का कृष्ण का विवाह हो गया, कर दिया पुष्प वृष्टि, तैयार रहते वो अपने कैसे, अभी ये जयेश प्रभु मृदंग लेके तैयार रहते, कभी चालू किया तो तुरंत चालू बजाना, वैसे वो भी मृदंग भेरी हाँ अनेक वाद्य लेके अप्सरा सब रेडी रहते हैं, कोई घटना हो गई चालू डांसिंग और सिंगिंग चालू और कुछ लोग फूल बरसाने में चालू। उन्होंने फूल बरसाए, विष्णु भी अंतर्धान हो गए और फिर ये प्रार्थना कर ही रहे हैं, इनके लिए तो कोई सीन दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। जब वो सीन खत्म हो गया तो अचानक यज्ञ कुंड के अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, इतना प्रकाशमान, इतना तेजपुंज, मानो विष्णु ही हुए स्वयं, और वैसा प्रकट हो गया और नीचे आया और दशरथ के सामने पृथ्वी से कई इंच ऊपर खड़ा हो गया। हाँ, मतलब पृथ्वी पर पैर नहीं लगाया, देवता लोग पृथ्वी पर पैर रखते नहीं हैं, हम लोग जिस पर आराम से रहते हैं वहाँ पर वो आते नहीं, क्योंकि यहाँ का जीवन जो है बड़ा कष्टमय है, ये देवता लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग यहाँ पर और थोड़ा एडवांसमेंट और थोड़ा कम्फर्ट्स ऐशो आराम प्राप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते, ऐसा दुख यहाँ पर है। एनीवेज, तो वो अपना हाथ में सोने का कलश भरकर उसमें स्वर्गीय दिव्य दैवी जो खीर है वो लेके आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो सारे जीवों के मालिक हैं, हाँ, सर्वभूतेश्वर सर्वलोक महेश्वर विष्णु, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ और उनकी तरफ से आपके यज्ञ के उपलक्ष्य में प्रसाद के रूप में ये खीर लाया हूँ, ये खीर आपने पत्नियों को दीजिए, यथावकाश आपके मन की कामना पूरी होगी और स्वयं भगवान अपने गर्भ में जन्म लेंगे। तो अचानक इतने सब लोग खुश हो जाते हैं, राजा को तो लगता है ऐसे कि कांप रहा है राजा, दशरथ राजा आनंद के मारे विभोर होकर कांप रहा है। तुरंत यज्ञ समाप्त होकर अपने पत्नियों को लेकर वो अपने महल में जाता है और उसके प्रसाद का दो हिस्सा करता है। मैंने आपको उस दिन कहानी बताई थी, जब वो जाता होता है तो भी एक हिस्सा जो है गरुड़ गरुड़ आके उसको लेके जाता है और केसरी की जो पत्नी है अंजनी उसके हाथ में जाके छोड़ता है और उसे हनुमान जी का जन्म होता है। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है वो घर जाकर आधा हिस्सा कौशल्या को, जो बड़ी पत्नी है, ज्येष्ठ पत्नी है, और आधा हिस्सा कनिष्ठ पत्नी जो बड़ी प्रिय है कैकेयी उसको देते हैं। फिर कौशल्या अपने आधा हिस्सा और कैकेयी अपना आधा हिस्सा सुमित्रा को देती है। यथावकाश कौशल्या को राम जी का जन्म होता है और कैकेयी के द्वारा भरत का जन्म होता है और सुमित्रा को जो दो हिस्से आधे आधे मिलते हैं उसमें शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म होता है। और जन्म से ही इनका ऐसे रहता है कि इनका जन्म होने के बाद तुरंत सब जगह पुष्पवृष्टि होती है, सभी देवता लोग अपने लोगों में नाच करने लगते हैं, पुष्पवृष्टि करते हैं, आनंद मनाते हैं, गीत गाते हैं, ब्राह्मण लोग श्लोक गाते हैं, वैदिक मंत्र गाते हैं, हाँ, और राजा उनको हजारों लाखों गाय दान देते हैं सब ब्राह्मणों को। फिर उनका नामकरण विधि होता है, राजगुरु वशिष्ठ मुनि वहाँ आते हैं और सबका नाम रखते हैं, उनका गुणगान करते हैं, सभी भाटों को, सभी लोगों को, सभी अयोध्या के पूरे राज्य में सब लोग दीपक जलाते हैं, अपने घरों में फूल लगाते हैं, आंगन में सुगंधित जल छोड़ते हैं, हाथी से मिठाई बांटते हैं, हाँ, दीपक की रोशनाई करती है सब जगह पर, सब जगह पर दिव्य कार्यक्रम होते हैं आनंद के। दशरथ राजा सबको दान देते हैं दिन रात। लेकिन विशेष बात यह है कि सोते हुए नहीं सुनना, बैठ के सुनना अच्छी तरह से। तो हरे कृष्णा, प्रभु रामचंद्र भगवान की। तो एक विशेष बात नजर आती है कि रामचंद्र के साथ में लक्ष्मण का प्रेम और भरत के साथ में शत्रुघ्न का प्रेम। रामचंद्र कभी भी लक्ष्मण के बिना भोजन नहीं करेंगे, भरत कभी भी शत्रुघ्न के बिना भोजन नहीं करेंगे। जैसे राम की छाया लक्ष्मण, वैसे भरत की छाया शत्रुघ्न, जहां जाएंगे उसके पीछे पीछे राम के पीछे लक्ष्मण और भरत के पीछे शत्रुघ्न। ऐसे बचपन से अपने आप ही प्रकट हो गया दोनों का प्रेम, जैसे मानो एक मालिक और दूसरा सेवक, लेकिन है तो भाई भाई। और इस तरह से वशिष्ठ के नेतृत्व में उनको विद्या प्राप्त होती है, 12 साल तक वो विद्या वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सब प्रकार की विद्या सीखते हैं, राज विद्या, व्यापार विद्या, योग विद्या, हाँ, वेदों का शास्त्र ज्ञान, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, सब प्रकार के 18 विद्याएं सीख देते हैं। और जैसे ही बड़े होते हैं तो अचानक एक दिन विश्वामित्र मुनि आते हैं। ये विश्वामित्र मुनि बड़े विचित्र मुनि थे, ये पहले जमाने में राजा थे, राजा विश्वामित्र, और वो वशिष्ठ के आश्रम में गए थे एक बार, राजा बनकर सेना लेकर गए थे, अचानक गए थे वो, जब राजा थे तभी। और वशिष्ठ मुनि तो बेचारे गरीब ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, वो बड़े पावरफुल थे। ब्रह्म ऋषि के वर्गीकरण में उनका नाम आता था। ब्रह्म ऋषि यानी कि सबसे श्रेष्ठ ऋषि, उसके ऊपर कोई ऋषि नहीं होता है। ब्रह्मा उनको स्वयं आकर पदवी देते हैं कि तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। तो ब्रह्म ऋषि थे, उनके पास एक गाय थी, उसका नाम था कामधेनु। तो अचानक ये करोड़ों की सेना लेकर वशिष्ठ मुनि के झोपड़ी में पहुंच गए। तो कुछ ही समय में वशिष्ठ मुनि ने राजा को अपने करोड़ों सेनाओं के साथ में बड़ा भोजन खिलाया, बहुत जोरदार, जो राजा भी महल में नहीं खिला सकता है। सबसे बड़ी बात तो कुछ ही मिनटों में खिलाया, ऐसा नहीं कि भाई तुम बैठो अभी शाम तक बनेगा, 15 आइटम का ऑर्डर दिया है, ऐसा नहीं। ये लोग गए जैसे नदी में स्नान करने वाले, तब तक तो पूरा मेजबानी तैयार था और किसी को कम नहीं पड़ा। तो आश्चर्य हुआ, पड़ा रही तो इतना फकीर दिखता है आदमी, इतना जंगल में रहता है, कहाँ से आया इतना भोजन, इतना बड़ा, इतना स्वादिष्ट, इतने व्यंजन, इतना क्वांटिटी कैसे बना इतना। तो उनको मालूम पड़ा कि इनके पास एक गाय है, कामधेनु। कामधेनु मतलब उसके पास खड़े होकर जो चाहे मांग लो, जो चाहे मांग लो मिल जाता है। तो इन्होंने इसके पास आए और बोले इतने करोड़ सेना आई है, उनको खाना खिलाओ। तुरंत खाना तैयार। बोला अच्छा, मैं राजा हूँ, पूरे पृथ्वी का राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, और मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो एक फकीर साधु के पास है, और मैं तो राजा हूँ, इस राज्य में जो कुछ है मेरे मालिक का है, मैं स्वामी हूँ उसका, तो ये काम देनु मुझे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ मुनि मैं दुनिया का राजा हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि ये गाय मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे राज्य में तुम रहते हो, ये मुझे दे दो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो मैं तो आपको भोजन खिलाया लेकिन रोज मैं इतना खाना नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल दूध लाता हूँ, उसमें घी बनाता हूँ, अपने यज्ञ के लिए उसका इस्तेमाल करता हूँ, और मैं गाय से कुछ नहीं, लेकिन मेरी गाय ही मेरा ही साधन है जिससे मेरा भजन पूजन होता है, तपस्या होती है, तो इसको आप मत ले जाओ। तो विश्वामित्र नहीं माने, उन्होंने उसको छीन के लेके जाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कामधेनु को छीनने का प्रयास किया, किसी को पता है क्या हुआ, किसी को पता है क्या हुआ? अचानक गाय के चार पैरों से अनंत सैनिक निकले, शस्त्र अस्त्रधारी, अनंत करोड़, और देखते देखते कुछ ही मिनटों में उन सारी सेनाओं ने विश्वामित्र की सारी सेना को परास्त कर दिया। विश्वामित्र को परास्त होकर भागना पड़ा। तब विश्वामित्र को ऐसा लगा, नहीं अरे ये तो बड़े महान ऋषि है, अभी तो मुझे दंडवत करना चाहिए उनको। उसको और ईर्ष्या हो गई मन में, बोला ऐसा क्या, ऐसी बड़ी बात है इनके अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म ऋषि है। बोला अच्छा, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनता हूँ। तो गए और राज्य का त्याग कर दिया और जंगल में जाके तपस्या करने लगे। 60,000 साल तपस्या किया उन्होंने। तो इंद्र को भी टेंशन आया कि अभी तो और तपस्या करेगा तो मेरा पद ले लेगा। तो इंद्र ने अपना अस्त्र भेज दिया मेनका को। मेनका ने पायल बजाई तो इनका ध्यान टूट गया और उनका संबंध हो गया और उसमें से शकुंतला का जन्म हुआ। लेकिन शकुंतला का जन्म होने के बाद फिर भी होश में आए, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, अभी नहीं करूँगा गड़बड़, ऐसे करके फिर तपस्या किया और फिर जाकर तपस्या में सफल हो गए वो, और वो खुद ब्रह्म ऋषि बने। तब जाकर उन्होंने वशिष्ठ मुनि को दंडवत किया, क्योंकि तो ब्रह्म ऋषि बनना मतलब कोई पोजीशन और डिग्री नहीं है, MBBS और MD। हाँ, विश्वामित्र मुनि कौमा ब्रह्म ऋषि ये तो हृदय की उन्नति की बात है। हाँ, जब हृदय से आत्मा से जब व्यक्ति इतनी उन्नति कर लेता है तब ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं ब्रह्म ऋषि पद का। कोई डिग्री नहीं, कॉलेज में जाकर एग्जाम देने का, वाइवा और ओरल देने का काम नहीं है ये। लेकिन वो फिर सच में वास्तव में ब्रह्म ऋषि बने। तब वो ऐसे ईर्ष्यालु और झगड़ालु और ऐसे द्वेष करने वाले नहीं थे, तब तो महान ऋषि बन चुके थे। ये तो हजारों साल पहले की बात है। तो वशिष्ठ इनके दशरथ के राजगुरु हैं, तो इनके घर में मेहमान के रूप में विश्वामित्र मुनि आते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी। हाँ, और आकर जैसे आते तो राजा तुरंत उठकर दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने आसन पे उनके बिठाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनको भोजन कराते हैं, आराम कराते हैं, और फिर सब कुछ आराम कराने के बाद में पूछते हैं कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो विश्वामित्र मुनि जो ना राजा के रूप में, उनके पास सारे शस्त्र अस्त्र थे, सारी विद्या थी उनके पास राजा होने तब से, और उसके बाद जब ब्रह्म ऋषि बने तो और ज़्यादा शक्ति उनके पास में आई, बहुत भयंकर शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ थी उनके पास। लेकिन वो ब्राह्मण बने थे ना, क्षत्रिय से अभी ब्राह्मण बन गए थे, तो वो जंगल में रहकर तपस्या और यज्ञ कर रहे थे विश्व कल्याण के लिए, और उनके विश्व कल्याण के किए हुए यज्ञ के अंदर राक्षस लोग आकर बाधा डालते थे, और साधारण नहीं, ऐसे गली के गुंडे लोग नहीं, ताड़का, सुबाहु, मारीच, ऐसे भयंकर राक्षस जिनके पहाड़ जैसे शरीर हुआ करते थे, ऐसे भयंकर राक्षस जो है वो कभी जानवर का बेस बनाकर, कभी पंछी का बेस बनाकर, कभी अदृश्य होकर, कभी दृश्य रूप में, कभी पहाड़ का रूप बनाकर, कभी कुछ बनाकर, कभी आकाश में मलमूत्र की वर्षा करते थे, हमारे ऊपर पानी की वर्षा होती है वो तो यूरिन और स्टूल की वर्षा करते थे, कभी मरे हुए जानवरों को फेंकते थे, कभी खुद आकर पेशाब चट्टी करते थे, ऐसे भयंकर आतंक करते थे, कभी धूल का तूफान मचा देते थे, कुछ दिखाई पड़ता नहीं था, जीवन हराम करते थे। और जैसे इनका यज्ञ पूरा होने का था तब ये सब आतंक करते थे, और एक नहीं इनके हजारों सैनिक हुआ करते थे, वो सब आकर ऐसे पागलों की तरह नाश करके यज्ञ का विध्वंस करते थे। उनको सबको मारने की शक्ति विश्वामित्र मुनि के अंदर थी, लेकिन वो ब्राह्मण थे, वो जानते थे कि मेरा काम नहीं है, ये काम क्षत्रियों का है, ये उनको करना चाहिए। इसलिए वो दशरथ राजा के दरबार में आए थे, और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे यज्ञ में बाधा हो रही है, और राक्षस लोग उसको तंग कर रहे हैं, हमको उनका वध करने के लिए हमको राम की ज़रूरत है। तो ये सुनकर बड़े दुखी हो गए दशरथ राजा। पहले क्या बोले थे, महाराज जी आपकी क्या इच्छा है मैं पूरी करने का वादा करता हूँ, मैं रघुकुल का राजा हूँ, रघुकुल का ऐसा रीत है कि जब वचन देते हैं तो मर जाते हैं लेकिन वचन पूरा कर देते हैं, आप मांगो आपकी क्या इच्छा है मैं पूरी करने के लिए आपका सेवक हूँ। उसके बाद में ये बोलते हैं कि मुझे राम की ज़रूरत है, मैं राम को लेके जाना चाहता हूँ। तुरंत इनका मूड बदल हो गया, अरे 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 नहीं नहीं, राम तो बच्चा है, अभी 12 साल का हो गया है, अभी तो उसको पता भी नहीं है कैसे शस्त्र उठाना है, अभी तो वो जस्ट पास होके बाहर निकला है, अभी तो उसने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या तकलीफ है, आपको मुझे राक्षस का लिस्ट बताइए, वो कहाँ 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 से राक्षस आते हैं उनका नाम बताइए, मैं पूरी अयोध्या की सेना लेकर आपके साथ में रहूँगा। क्यों बच्चों को लेके जाते आप, मैं दशरथ राजा हूँ, मैं बड़ा प्रगल्भ हूँ, हाँ बुजुर्ग भी हूँ, तो शक्तिशाली भी हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना कहानी, इतने शक्तिशाली दशरथ राजा थे कि उनके राज्य में शनि का प्रभाव कभी हो सका नहीं, और शनि को भी उन्होंने दंग कर दिया अपने युद्ध के कौशल से, वीरता से शनि भी दंग रह गए, और शनि ने भी वादा कर दिया कि है भाई कोई बात नहीं, आपके राज्य में कभी भी मैं अपना प्रभाव डालूंगा नहीं, आप शनि प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, ऐसे वीर थे वो। तो वो कहते मैं दशरथ राजा कह रहा हूँ अयोध्यापति कि मैं आपकी सेना को लेकर आपके पीछे आऊँगा, आप मुझे नाम तो बताओ राक्षस का। तो कहते हैं रावण। जैसे ही रावण का नाम सुनते हैं तो स्वयं दशरथ भी भयभीत हो जाते हैं, अरे वो रावण जिसने इंद्र आदि सब लोगों को परास्त करके भयभीत करके भगा दिया है, और आप उसके लिए मेरे राम को मांग रहे हैं, राम तो बालक है, वो रावण के सामने कैसा खड़ा रहेगा, उसने कुबेर को परास्त कर दिया है, इतने भयंकर देवताओं को उसने सहज परास्त करके भयभीत करके भगा दिया है, उसके सामने आप मेरे बच्चे को मांग रहे हो राम को, नहीं नहीं मैं बच्चों को भी दे सकता नहीं हूँ, मैं भी नहीं आ सकता हूँ। एक्चुअली वो जानते थे कि उनका पुत्र कौन है, लेकिन ये पिता का प्रेम ऐसा होता है ना, वो पिता हमारा पुत्र जो है वो भगवान भी रहेगा तो पिता को लगता नहीं कि वो भगवान है, नंद महाराज है अपने, कभी लगा नहीं उनको कि हमारे पुत्र कृष्ण भगवान है, वो तो आकाश में बादल गड़गड़ाहट होने के बाद में भाग के आते थे माँ की गोद में। तो कहते हैं कि भगवान है क्या ये, देखो आकाश में बादल गजरने से भाग के माँ की गोद में आता है, ये कैसे भगवान हो सकता है, नहीं 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 देवता होगा, देवता देवता, अरे देवता लोग किसी घर में पेशाब नहीं करते, ये तो दूध नहीं माखन मिलने पर जाकर गोपियों के घर में पेशाब करके आता है, बच्चों के कान में पानी डाल के आता है, तो ऐसी भगवान लीला करते थे कि नंद महाराज यशोदा को कभी पता ही चलता नहीं था कि ये भगवान है। वैसे ही नंद महाराज ये दशरथ के अवतार है, हाँ यशोदा माई ये कौशल्या के अवतार है। ये पिछले जन्म में कौशल्या और दशरथ थे, तो अपने बालक के प्रेम के वश, वात्सल्य के प्रभाव के वश उनको डर लगता था कि हमारे बालक कैसे खड़े रहेंगे रावण के सामने। वो बाद में बोलते हैं ताड़का, बाद में बोलते हैं सुबाहु, बाद में बोलते हैं मारी, जितने भयंकर राक्षस का नाम लेके आप उनको मारने के लिए मेरे बालक को लेके जा रहे हैं, नहीं हो सकता ये। और ये डिस्कशन करते करते कई बार बेहोश हो गए वो। अरे कैसे तुम, फिर होश में आके बोलते रो रो के हाथ जोड़ के मत लेके जाओ, उनके पैर बढ़ते हैं, पैर पकड़ते हैं बुनी के, मत मेरे बच्चे को लेके जाओ। वो तो अभी तलवार अभी उठाने को थोड़ा सीख रहा है वो धनुष और बाण को उठाने में सीख रहा है अभी वो। लेकिन वशिष्ठ मुनि के अनुसार वो पूरी विद्या में पारंगत हो चुके थे, कुशल हो चुके थे। और वशिष्ठ मुनि खड़े होकर सुन रहे हैं सब। विश्वामित्र मुनि को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है और फाइनली विश्वामित्र बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, आपने कहा था आप रघुकुल के हैं, वचन के पक्के हैं और आपने वादा किया था, अभी आप वादा को हटा रहे हैं, चलो हम चले जाएंगे वापस यहाँ से, नहीं चाहिए आपका बालक, हम जिस रास्ते से आए हैं उससे चले जाएंगे वापस। तो तुरंत वशिष्ठ मुनि समझ गए, अरे विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि हैं, अभी दशरथ के ऊपर शाप गिरने वाला है इनके क्रोध की वजह से, इनका ध्वंस हो जाएगा मेरे शिष्य का, मेरे यजमान का। तुरंत बीच में आ गए, वो बोले देखो ऐसा है आप चिंता मत करना, वह विश्वामित्र मुनि स्वयं भी इन सभी राक्षसों का वध कर सकते हैं, केवल मंत्र बोल के, शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, युद्ध करने की जरूरत नहीं है इनको, ये खड़े रहेंगे एक मंत्र बोलेंगे वहीं वध हो जाएगा, ऐसी शक्ति उनके पास में है। और ये भी बात सोचो कि विश्वामित्र मुनि को तुम्हारे पुत्र को कुछ देना है, ये देने का बहाना है, इसलिए उनको ले जाना चाहते हो, इसमें तुम्हारा हित ही है, इसमें तुम्हारे कुल का भी हित है, तुम्हारे पुत्रों को दैवी अस्त्र देंगे ये मुनि, इसलिए आप संकोच मत करना और तुम्हारे पुत्र की रक्षा भी करेंगे, जब संकट आएगा लगेगा तो वे खुद रक्षा करेंगे तुम्हारे पुत्र की, इसलिए निस्संकोच होकर भेज दो इनको। तभी भी ये मानते नहीं है, प्रेम है ना पुत्र के ऊपर, तो उनको दूर लेके जाते हैं। अभी ये डिस्कशन जो है ये उनके साथ में हो रहा है, अभी उनको बाजू में लेके जाते हैं और बताते हैं वशिष्ठ मुनि दशरथ राजा को, अरे दशरथ राजा पता है राम कौन है, ये स्वयं विष्णु है, ये स्वयं परम भगवान है, इनको किसी का भय की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते कहते जब सुन रहे दशरथ राजा तो मुड़कर अपने पुत्र को देखते हैं, लेकिन जैसे अपने पुत्र को देखते हैं उनके मन में वात्सल्य और जागृत होता है, उनको लगता नहीं कि विष्णु है, ये मेरा बालक है, और फिर रोने लगते हैं। फिर बाद में कहते हैं देखो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, इस प्रकार से उस प्रकार से इस प्रकार से, बाद में बोलते देखो ऐसा है तुम अगर देने के लिए मना करोगे राम को तुम्हें शाप मिलेगा, अभी शाप देने वाले हैं तुमको, तुम्हारा कल्याण कुटुंब का ध्वंस हो जाएगा, इसलिए अभी तुम अपने वचन से मत हटो, तुम्हारे पुरखों की जो कीर्ति है वचन पालन करने की वो भी तुम धब्बा बन जाओगे उसके ऊपर। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पुरखों पर कभी भी तुम्हारे वजह से, तुम्हारे व्यवहार की वजह से कोई ऐसी आँच ना आ जाए जिसके उनकी कीर्ति में भंग आएगा तुम्हारे वजह से। तो वो बात कुछ उसके दिमाग में बैठी, उन्होंने कहा ठीक है, आके बोला ले जाओ, लेकिन वादा करना कि आप मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे ऐसा पिता का प्रेम होता है। पुत्र कितना भी महान होगा तो पिता पिता ही होता है, वो अपने पुत्र पर उसका प्रेम जो है ऐसे ही रहता है। और फिर जैसे ही राम निकलने लगे तो तुरंत लक्ष्मण उनके पीछे आए, तो दशरथ को भी अच्छा लगा चलो भाई एक की रक्षा के लिए और भेजेंगे तो वो भी सहायता करेगा उनको, तो उनको भी राजी हो जाता ले जाओ उनको, और दोनों जो है तुरंत उनके पीछे चलने लगते। प्रभु रामचंद्र तो क्या है, पिताजी उनको कहते हैं देखो मेरी तुम्हारे लिए आज्ञा है कि विश्वामित्र मुनि जैसे बोलेंगे उस आज्ञा का पालन करना है, और तुम्हारे लिए कोई मिशन नहीं है, अभी जब तक वापस नहीं आओगे तब तक उनको एक ही काम करना है, जो विश्वामित्र मुनि कहेंगे उसको पालन करना है, बस यही मेरी आज्ञा है। तो पिताजी के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर वो चले पड़ते हैं, जंगल में जाते हैं। जंगल में आते तो अचानक बीच जंगल के अंदर बहुत भयंकर ऐसी आवाज़ आने लगती है, गर्जना ऐसे जोरदार। प्रभु रामचंद्र पूछते क्या है ये, कहाँ से आवाज आ रही है? तो बोलते हैं कि ये ताड़का का राज्य है, ताड़का नाम की राक्षसी जो है ये इसका एरिया है। ये एरिया के अंदर हमेशा भयंकर घटनाएं घटती रहती है, कोई जीव जीवित रहता नहीं है, सब जानवर खा चुकी है वो, जो भी आता है उसको भी खा जाती है, और यही हमारी यज्ञ में आकर बाधा डालती रहती है। तो प्रभु रामचंद्र को लगा अरे पहली बार किसी युद्ध करना है तो भी वो लड़की के साथ, बेचारे कृष्ण के रूप में आए तो पहला किसका सामना किसका हुआ था, पुतना के साथ, तभी परेशानी हुई थी, आग बंद कर लिया उन्होंने अभी, अरे पहली बार तो औरत को मारना है। तो उनके मन की बात जानकर विश्वामित्र मुनि ने कहा मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है, तुम तो पुरुष हो, वीर हो, क्षत्रिय हो, तुम स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहते, मैं जानता हूँ, लेकिन शास्त्र भी कहता है कि स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, उस पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपत्कालीन स्थिति है, ये स्त्री वैसी साधारण स्त्री नहीं है, जो सुशील है, सलज्ज है, हाँ सबके साथ में प्रेम करती है, सबकी रक्षा करती है, सबको अपना दूध देकर बालक को बड़ा करती है, सबके ऊपर कल्याण करती है, वैसी स्त्री नहीं है ये, ये राक्षसी स्त्री है, ये सबका ध्वंस करने वाली है, ये विश्व का नाश करने वाली स्त्री है, इसका वध करने का तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय के रूप में। फिर भी ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं स्त्री है अभी क्या करें। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो और गर्जना बढ़ने लगती है, तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मुझे देखना है इसको कैसी है ये राक्षसी। तो अपना धनुष निकालते हैं और उसका जो प्रत्यंचा है ना दोरी, उसको जोर से खींचते गोल करके छोड़ देते हैं और इतना जोरदार आवाज़ निकलता है कि पूरे पृथ्वी में कंपन होता है, सारे झाड़ जो है अले हिलने लगते हैं और इतना भयंकर गर्जना से सारे पंछी उड़ जाते हैं। और ये भयंकर आवाज़ सुनकर ताड़का बाहर आती है अपनी गुफा से, तो किसकी हिम्मत है मेरे एरिया में आने की, मेरे एरिया में आके धनुष की प्रणत्कार सुनाकर मुझे आह्वान देने की आज्ञा किसकी है, इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है। तो क्या देखती है, दो छोटे से बालक 12 साल के धनुष धारण किए हुए आवाज़ करते हुए आ रहे हैं। तो राम बोलते लक्ष्मण को देखो लक्ष्मण कितनी भयंकर है ये, इसको देखने से किसको डर लगेगा, इसको आने की जरूरत नहीं है, इसको देखने से क्यों मर सकता है, इतनी भयंकर है वो। इसकी आंखें देखो, उसके हाथ देखो, उसका रंग देखो, उसके बाल देखो, उसका एक एक शरीर का अंग देखो, पेट नगाड़े जैसा है, हाँ अरे शरीर पहाड़ जैसा है, और दांत कितने देखो बाहर आ रहे हैं उसके, ऐसे वर्णन करके उसे उनको जरा संवाद कर रहे हैं वो। तो वो कहते हैं कि हम ना इसको मारेंगे नहीं, हम इसको शक्तिहीन कर देंगे ताकि हमारे भी वध करने का धब्बा नहीं लगेगा। तो उतने में वो उन पर ऐसे आक्रमण करने आने लगती है, तो तुरंत धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं और शस्त्र वस्त्र का प्रहार करने लगते हैं। वो वहाँ से हजारों पत्थर उन पर फेंकती है, हजारों पत्थर, हजारों पेड़, ऐसे भयंकर, कभी वो प्राणी बनकर आती है, कभी पंछी बनकर आती है, कभी अदृश्य रूप में आती है, कभी आगे से आती है, कभी पीछे से आती है, कभी सरके से आकर पंखों से अपना हाथों से हमला करती है। तो फिर बहुत देर ऐसा बोलते ना लुटू पुटू युद्ध होते ना, बच्चे लोग खेलते ना कभी ऐसे टाइम पास में, वैसे होता है बहुत देर तक उनका। उसके बाद प्रभु कहते हैं कि अभी इसका इलाज करना चाहिए, तो बाण लेते हैं और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट देते हैं। फिर भी वो आकाश में अदृश्य होकर उनके ऊपर हमला करती रहती है। तो लक्ष्मण जी अपने बाण निकालकर एकदम कुशलता से नेम लगाकर उसके नाक और कान काट देते हैं इतनी दूर से, तो और गुस्सा होती है और पूरा हावी होकर उन पर प्रहार करने आती है। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं राम संध्या का समय हो रहा है, संध्या के समय के बाद में ये राक्षस लोग ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इनकी शक्ति बढ़ जाती है, इसके पहले ख़त्म करो इसको। और मैं जानता हूँ तुम संकोच कर रहे हो, हाथ पांव काटकर उसको शक्तिहीन करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन इसे मार डालो, ये मेरा आदेश है। तो तुरंत उनको अपने पिताजी का आदेश की याद आती है कि मेरे पिताजी ने कहा था जो ये कहेंगे वैसे करना है। तो फिर वो मनु का जो अस्त्र है ना, मनु अस्त्र वो निकालते हैं, उसको कहते हैं मानव अस्त्र, जिसके अधिकारी मनु हैं ब्रह्मा के पुत्र, वो अस्त्र निकालते हैं और छाती पर आहत करते हैं, तो इतना भयंकर ध्वनि करके ये जमीन पर गिर जाती है, मर जाती है। तब तुरंत आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं इनके ऊपर, चलो भाई एक बड़ी राक्षसी का वध हो गया ताड़का का। देवता लोग क्योंकि ये सब लोग, रावण अकेला नहीं था, ये सभी भयंकर राक्षस सब लोग मिलकर तंग करते थे इनको। और इनको मारने की शक्ति, राक्षसों के मारने की शक्ति देवताओं के अंदर नहीं थी। तो इसको मारकर प्रभु रामचंद्र को आशीर्वाद देते हैं और चलने लगते हैं। तो आगे वो नदी आती है, उसका नाम है शोण नदी, बड़ी फेमस नदी है वो, अपने इतिहास में रामायण में बहुत बार उसका वर्णन आता है, जैसे गंगा नदी वैसे शोण नदी। तो उसमें ये पार करते हैं, जब जहाँ नदी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, वहाँ से वो आगे चले जाते हैं तो बड़ा सुंदर इलाका आता है। तो रामचंद्र प्रभु पूछते हैं कि अरे ये क्या है, पहले तो भयंकर एरिया आया था, अभी बहुत सुंदर एरिया है, सुंदर हवा बह रही है, सब लोग पंछी पक्षी घूम रहे हैं, कोई शत्रुता नहीं है इसके अंदर, कोई सब लोग मिल रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, क्या कौन सा एरिया है? तो वो कहते हैं कि ये मेरा आश्रम है, विश्वामित्र मुनि कहते हैं। किसी आश्रम में पहले स्वयं भगवान ने, वामन रूप में जब भगवान आए थे, वो पूरी कहानी सुनाते हैं प्रभु रामचंद्र को। उनका दो उद्देश्य रहता है प्रभु रामचंद्र को लेके जाने का, एक तो पूरी सारी पौराणिक कहानियाँ उनको बताना था और जितने भी दिव्य अस्त्र है उनको देने थे, और तीसरा उद्देश्य था राक्षसों को मारने का। तो जब वो पूछते हैं कि एरिया कौन सा है ये, तो ये पूरी वामन देव की कहानी सुनाते हैं जो भागवत में आती है ना, प्रभु रामचंद्र सुनते हैं वो कथा राम लक्ष्मण के साथ में। हाँ गोपीकांत जी, प्रभु रामचंद्र ये कहानी सुनते हैं कि बलि राजा के यज्ञ में भगवान विष्णु उपेंद्र वामन देव बनकर आते हैं और पूरी पृथ्वी छीन लेते हैं, स्वर्गलोक छीन लेते हैं उनसे, और फिर वो इस जगह पर आकर आराम करते हैं। तो ये आश्रम जो है भगवान वामन देव का निवास किया हुआ पवित्र हुआ स्थान है, यहीं पर मैं भजन करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। तो लेके जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि इतनी पवित्र भूमि पर हम लोग आए। तो प्रभु रामचंद्र उनके सारे जो ऋषि मुनि थे आश्रम के सभा के स्वागत करते हैं, गाँव के जो जंगल के फल फूल उनको खिला देते हैं, पानी पिलाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनको आराम करने बोलते हैं। वो कहते हैं कि अब आप आ गए हो, आप दोनों वीर बालकों को देखकर, आपका तेज देखकर, आपके धनुष को शस्त्र को देखकर हमें ये विश्वास हो रहा है कि अभी हम राक्षस के आतंक से मुक्त हो जाएंगे। सब लोग विश्राम करते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि कल हम यज्ञ करने वाले हैं और आप लोग हैं इसलिए आपकी सुरक्षा में यज्ञ करेंगे। तो भली सुबह सब लोग उठ जाते हैं, 3 बजे ही प्रथम प्रहर में, और सब लोग अपना भजन करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ की तैयारी करते हैं। सूरज उगने के समय इनका यज्ञ शुरू होता है। तो सभी ऋषि मुनि जो आश्रम में थे, विश्वामित्र मुनि के असिस्टेंट, सब लोग कहते हैं कि अभी 7 दिन विश्वामित्र मुनि जो है वो मौन में जाएंगे और 7 दिन का यज्ञ होगा, और 7वें दिन में मौन छोड़ेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। तो 6 दिन तक ये लगातार यज्ञ स्वाहा करते रहते हैं, बड़ी धूमधाम से, बड़ी पवित्रता के साथ में ये 6 दिन का उनका यज्ञ जो है वो आगे चलते रहता है। आखिरी दिन उगता है 7वें दिन। तो 7वां दिन जब शुरू होता है तो उगते ही भयानक तूफान आता है, धूल का तूफान आता है, सब कुछ दिखाई बिना बंद हो जाता है। अरे बोले ये क्या हो रहा है? तो वो सब कहते हैं ऋषि मुनि, हमने कहा था ना कि यहाँ पर राक्षसों का आतंक है बहुत, अब ये लोग आके हमको सब परेशान करेंगे, हमारा यज्ञ का पूर्ति होने वाला है तो सब भंग कर देंगे। तो अचानक फिर आकाश से मलमूत्र का बरसाव शुरू होता है, पत्थर गिरने शुरू होते हैं, फिर अचानक राक्षस पैदा होते हैं वहाँ पर, सब यज्ञ के ऊपर आके नाचते हैं, मलमूत्र डालते हैं और क्या क्या गंदा फेंकते हैं उसके ऊपर, सब ऋषि मुनि भाग जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि जो है नज़रों से राम लक्ष्मण को इशारा करते हैं कि अभी आपका काम शुरू हो गया है। तो आकाश में कौन आते हैं? मारीच और सुबाहु, ये कौन थे? ताड़का के पुत्र थे वे दोनों, कि अपनी माता का वैसे भी उनको बदला लेना था, वो देख रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, यज्ञ भी हो रहा है, चलो यहीं पर उनको हम लोग हमला करेंगे। तो तभी प्रभु रामचंद्र एक ऐसा अस्त्र, अभी बड़ा लंबा वर्णन है कैसा युद्ध हुआ उनका, वो हम लोग कट शॉर्ट कर देते हैं, 4 बजने वाले। तो प्रभु रामचंद्र ऐसा एक बात बचाना बीच में भूल गया आपको मैं, हाँ, जैसे ही अगले दिन सुबह होती है ना, वो आज पहुँचते हैं विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, उनकी कथा सुनते हैं, रात को सोते हैं, नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो विश्वामित्र मुनि उनको लगातार 6 दिन तक सारे देवताओं के जितने अस्त्र हैं वो दे देते हैं। वो कहते हैं कि अभी आपको उपवास रख के ध्यान धारण करके मौन में बैठना है और मैं एक एक शस्त्र के देवताओं को पुकारूंगा और वो देवता अपना शस्त्र आपके हाथ में पर्सनली आके देंगे। मैं मंत्र पुकारूंगा तब वो देवता यहाँ प्रकट होगी और अपना जो सबसे पावरफुल शस्त्र है, जैसे कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है, हाँ, और इंद्र का वज्र है, और वायु का वायव्यास्त्र है, अग्नि का अग्नेयास्त्र है, ऐसे हर एक का एक एक अस्त्र है, विशेष अस्त्र। निहारी का अस्त्र देवी का है, चंद्र का निहारी का अस्त्र है, भद्रकाली का और अस्त्र है, किसी की तलवार है, किसी का क्या है, शिव जी का पशुपतास्त्र है, विष्णु का चक्र अस्त्र है। तो वो सब लोग आपको प्रसन्न होकर व्यक्तिगत रूप में आपके सामने खड़े होकर आपको वो अस्त्र देंगे, आपको स्वीकार करना है। तो 6 दिन तक लगातार मंत्रोच्चारण होते रहे, एक एक देवता आते रहे और प्रभु रामचंद्र को अपना दिव्यास्त्र देते रहे, और 7 दिन तक ये सारे दिव्यास्त्र जितने लेने होते हैं वो सब उनको प्राप्त हो जाते हैं मंत्रों के रूप में। और वो सब देवता कहते हैं कि ये प्रभु आपको देखकर हमको लगता है कि यहाँ से जाए ही नहीं, आपके साथ ही रहे। प्रभु इतने आकर्षक थे, इतने प्रभावी, इतने सूर्य के समान तेजस्वी थे कि उनका दर्शन पाकर ये धन्य हो गए। कहते हैं कि आज इसके बहाने, शस्त्र देने के, अस्त्र देने के बहाने हमारा इतना भाग्य उदय हुआ है कि आपका दर्शन हो रहा है, तो हमें यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है। तो प्रभु कहते कोई बात नहीं, आप मेरे हृदय में निवास करोगे, और जब भी मैं आपको याद करूँगा तब मेरे हृदय में आप प्रकट हो जाना, फिर मैं शस्त्र चलाऊँगा आपका। ऐसे करके आशीर्वाद लेकर सब लोग चले जाते, और उसके बाद में फिर ये 6 दिन का मौन विश्वामित्र मुनि का शुरू होता है, और फिर वो यज्ञ होता है, फिर 7वें दिन ये सब होता है। तो तभी ये दिव्यास्त्र जो है ये ऑलरेडी उनको प्राप्त हो चुके हैं। तो उसमें से एक अस्त्र निकालते हैं और मारीच के ऊपर फेंकते हैं। मारीच का शरीर जो था वो कई पहाड़ों जैसा लंबा था, लंबा चौड़ा और फौलाद जैसा, चट्टान जैसा था, और उसका एक स्वभाव था वो केवल गर्जना करके लोगों को डराता था, इतना उसका भयंकर अस्तित्व था। तो प्रभु रामचंद्र ने जो बाण लगाया उसके ऊपर, वो जाकर छाती पे जाकर लगा तो ये 800 मील दूर जाकर समुद्र में गिर पड़ा। कितना मील? 800 मील, मतलब 100 योजन आकाश में उड़ गया वो पूरा, जहाँ पर था वहाँ से आकाश में उड़ा, और वो बाण के प्रभाव से वो 800 मील दूर जाकर समुद्र में गिर पाया और बेहोश हो गया, और कहते 6 महीने तक बेहोश रहा। उसके बाद जब उठा तो उसने VRS ले लिया, रिटायरमेंट, कि अभी आगे युद्ध नहीं करना है। इतना डर गया कि उसको अपने पास में शस्त्र अस्त्र थे, शक्तियाँ थी, वो चलाने का विश्वास ही नहीं रहा उसके अपने ऊपर। बोला इसके आगे मैं कहीं जाऊँगा नहीं, संन्यास लूँगा और आश्रम में बैठकर भजन करूँगा, अभी युद्ध वुद्ध करना बंद कर दूँगा। तब से लेकर जब रामचंद्र की पत्नी को रावण ने भगा के लेके गए, तो रावण उसकी सहायता मांगने के गया, तभी अभी तो 12 साल के रावण रामचंद्र थे, तभी तो पूरे नौजवान हो गए थे, वो पूरे शक्तिशाली नौजवान हो गए थे। तो ये रावण जब जाते हैं तो उनको बोलते हैं मारीच, अरे आप जानते हो जब मैं 800 मील मार खाकर समुद्र में गिर पड़ा था ना, तब ये केवल 12 साल के थे, आज 24 साल के हैं। होश में आ जाओ, 12 साल मेरे जैसा पहाड़ से जो शरीर था मेरा उसको उन्होंने उड़ाकर समुद्र में भेजकर मुझे बेहोश कर दिया था, तब से मैंने सब कुछ अस्त्र शस्त्र छोड़ना बंद कर दिया, मैं विरक्त होकर सन्यासी बन गया हूँ, मुझे पुनः काम पे आने को मत बोलो। रिटायर हो चुका हूँ मैं भी। बोला मैं कुछ नहीं जानता, राजा जब कुछ विनती करता है तो वही उसकी आज्ञा होती है, या तो मेरी आज्ञा पालन करने को तैयार हो जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारीच कहता है राजा के हाथों मरने से पाप लगता है, शत्रु के हाथों मरने से वैकुंठ प्राप्त होता है, चलो जाते हैं, वैसे भी मरना ही है, यहाँ से भी वहाँ से भी, तो वो तो राम है प्रभु, उसके हाथ से मरेंगे तो वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, चलो वैसे वो चलता है। तो वो मारीच था वो जो राम के बाण की चोट खाकर रिटायर हो चुका था। तीसरी बारी आई सुबाहु की, तो सुबाहु को तो राम ने वध कर दिया, उसको अग्नियास्त्र चलाया, उसके ऊपर अग्नि का आस्त्र चलाया और सबके आंखों के सामने भस्म कर दिया उसको, और फिर आकाश से पुष्पवृष्टि हो गई, और फिर देवताओं का यज्ञ जो है, ऋषियों का यज्ञ जो है विश्वामित्र मुनि का, वहीं से आगे बढ़ा, क्योंकि 7वें दिन का यज्ञ बाकी था ना, 7वें दिन के शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया, तो ये हाहाकार जब मच गया तो उन्होंने पूरा शुद्ध कर दिया दोबारा यज्ञ मंडली को, यज्ञ मंडल को शुद्ध कर दिया, दोबारा युद्ध किया और यज्ञ पूरा किया। फिर विश्वामित्र मुनि बोले, बहुत बढ़िया, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। अभी आप एक और भेंट आपको देनी है, वो देने के लिए हम अभी चलते हैं। इसलिए अपना यज्ञ का संपन्न करके अपना जो आश्रम है, जो वाल्मीकि वामन देव का निवास का स्थान था, वहाँ से वो चल पड़े सभी मुनियों को लेकर और प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण को लेकर वो आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़कर क्या हुआ, उनको कौन सी भेंट दी उन्होंने, ये हम आपको अगली कथा में बताएंगे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम, प्रभु रामचंद्र भगवान की, श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की, श्री वाल्मीकि रामायण की, श्री रामनवमी महोत्सव की जय हो।